ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. بڑی خوبصورت آیت ہے اور اس میں کائنات کی بعض نشانیوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے. کیا فرمایا؟ الم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت جو ہیں، اوپر آیت 20 میں آپ یہ پڑھ چکی ہیں کہ وہاں پہ کہا الم ترو، جمع کا صیغہ استعمال کیا، کیا تم نہیں دیکھتے، اور یہاں پر جو ہے وہ الم ترو کہنے کی بجائے جو ہے الم ترا کہا. واحد کے صیغے سے جو ہے وہ کائنات کی بعض نشانیوں کی طرف توجہ دلائی. تو آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عربی کا یہ بھی جو ہے وہ ایک انداز ہے کہ کبھی کبھی الم ترا جو ہے اس کا خطاب جمع کے لیے بھی آتا ہے. مخاطب گروہ کو ایک مخاطب گروہ ہے اور اس کے ایک ایک شخص کو فردن فردن توجہ دلائی جا رہی ہے. جیسے آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو کوئی بات کہوں، ایک سے کہوں اور ایک ایک سے کہوں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، تم نے نہیں دیکھا، تو یہ بھی کیا ہے کہ ایک اہمیت اور تاکید کا انداز ہے. الم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا نہیں دیکھتے؟ ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کہ اللہ تعالی جو ہے وہ پروتا ہوا لے آتا ہے رات کو دن میں. ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں. اللہ رب العزت جو ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں پروتا ہوا، لپیٹتا ہوا، داخل کرتا ہوا جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے ان اللہ، ویسے اللہ تھا یہ، ہاں پر پیش تھی، انا نے ہاں کے اوپر زبر دے دی. اچھا، یہ کہ اللہ، اب ہے یولجو. یولجو جو ہے یہاں پہ یولجو کیوں آیا اور دخلا کیوں نہیں آ گیا، ہے نا؟ دخلا بھی تو آ سکتا ہے نا. دخلا کے معنی ہوتے ہیں اندر آنا اور ادخلا داخل کرنا، تو دخلا یہاں پہ کیا آ جاتا، یدخلو آ سکتا تھا، ہے نا؟ تو لیکن کیا آیا، یولجو. تو دخلا جو ہے یہ عام لفظ ہے، اور ولجا یولجو جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی تنگ جگہ میں داخل کرنا. ولجا کسی تنگ جگہ میں داخل ہونا، اور اولجا کسی مشکل میں داخل ہونا، گھسنا، کسی تنگ جگہ میں داخل کرنا. آپ پیچھے پڑھ چکی ہیں سورت آراف میں، ولا یدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی السم الخیات. وہاں پہ یدخلون الجنت کا لفظ ہے نا، جنت میں داخل ہونا، جو ہے وہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، لیکن تنگ جگہ میں جب داخل کیا جائے، گھسیڑا جائے، تو اولجا کا لفظ آتا ہے. تو مراد کیا ہے کہ اللہ تعالی رات کو دن میں، دن کو رات میں گھسیڑ دیتا ہے، داخل کر دیتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ رات اور دن کا یہ ہیر پھیر، رات اور دن کا آنا جانا، رات کا جو ہے وہ رخصت ہونا، پھر اس کے بعد دن کا طلوع ہونا، رات جب ڈھلتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ دن کے طلوع ہونے کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہوتا ہے، اور دن جب ڈھلتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، گویا کہ رات جو ہے وہ آنے والی ہے. اور آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں سورت 39 آیت 5 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل. وہاں پہ کور کرنے کے معنی ہے. کور کرنا کیا ہوتا ہے، آپ دسترخوان بچھاتی ہیں پھر اس کو کور کر دیتی ہیں، اوور لیپ کرنا، ہے نا، اس کو لپیٹ دیتی ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز پر جو ہے وہ اوور لیپ کر دینا. تو کہیں اللہ تعالیٰ یولجو استعمال کرتے ہیں، کہیں یکورو استعمال کرتے ہیں. تو معنی کیا ہے کہ رات باندھ دی گئی ہے اور دن اس کے اوپر آ گیا ہے. اب دن کو باندھ دیا ہے، اکٹھا کر دیا ہے، لپیٹ دیا ہے، رات اس کے اوپر جو ہے وہ آ گئی ہے. तो रात और दिन का चक्कर जो है ये कोई मामूली बात नहीं है, हमसे तो एक चादर बिछ जाए तो वो उठानी मुश्किल होती है। तो इतनी बड़ी रात की चादर, इतने बड़े दिन के उजाले की चादर, अल्लाह ताला क्या करते हैं कि इसको जो है वो बार बार एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर पहला जो है उसको लाते चले जाते हैं। और ऐसा होता क्यों है कि रात और दिन की ये तब्दीली जो है ये क्यों होती है? इसलिए कि जमीन अपनी जगह पर साकिन नहीं है, सूरज अपनी जगह पर साकिन नहीं है, दोनों जो है क्या है कि गर्दिश में है। सही बात है ना? क्योंकि पहले जो था लोगों का ये ख्याल था कि जमीन जो है वो क्या करती है, वो अपनी जगह पर खड़ी हुई है, लेकिन बाद में फिर साइंस ने कहा कि वो चक्कर लगाती है। और ये रात और दिन का जो है वो हेर फेर इसका भी वजह क्या है कि जमीन अपनी जगह पर खड़ी भी नहीं है, चल रही है, और उसके चलने के बावजूद हम गिरते भी नहीं है। और इसके अलावा क्या है कि ये पूरा जो निजाम है फिर इसमें एक तब्दीली आती है। अगर जमीन अपनी जगह पर खड़ी रहती तो ये रात और दिन जो है ये तब्दील ना होते। तो यहाँ पे अल्लाह ताला रात और दिन की जो निशानियां हैं उसकी तरफ मुतवज्जो करते हैं कि ये अल्लाह की कुदरत और हिकमत है। अल्लाह ताला अपना तारुफ करवाते हैं कि यके बाद दीगरे पूरी सरगर्मी के साथ, ऐसे लगता है रात दिन को पकड़ना चाहती है और दिन रात को पकड़ना चाहता है, पूरी सरगर्मी के साथ एक दूसरे के ताकुब में, पूरी पाबंदी औकात के साथ इनकी आमद और शुद्ध जो है वो जारी है। तो ये है निशानी, और ये एक ऐसी निशानी है जो मैं और आप रोज देखते हैं, रोज देखते हैं, और हमें ये चीजें अजीब क्यों नहीं लगती? इसलिए कि हम जो है रूटीन के आदी हो गए हैं और हम भूल गए कि ये अल्लाह ताला ने किया है। फिर दूसरा कहा वसख्खरा शम्स वल कमर, के मुसख्खर किया शम्स को और कमर को। अब आप देख लीजिए कि सूरज के लिए शम्स जो है वो इस्तेमाल हुआ है और सिराज का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है ना? तो वहाज जो है वो भी अल्लाह ताला ने कहा है। तो कभी अल्लाह ताला उसको सूरज कहते हैं, कभी जैसे शम्स कहते हैं, कभी सिराज कहते हैं, और कभी वहाज कहते हैं। तो ये क्यों अल्लाह ताला ने सूरज के लिए ये सारी बातें जो हैं, ये मुख्तलिफ अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं? इसलिए कि जो चांद है ना वो तो है कमर, और कमर को क्या कहा? मुनीर, है ना? तो गोया के एक ऐसा वजूद है जो कि नूर देता है, रोशनी देने वाला है, लेकिन चांद की अपनी रोशनी नहीं है, चांद जो है वो सूरज से रोशनी जो है वो लेता है। सूरज की रोशनी जब चांद पर पड़ती है तो चांद हमें रोशन दिखाई देता है। कुरान मजीद में एक मर्तबा भी चांद के लिए सिराज व हाज के अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए, और ना ही सूरज को अल्लाह ताला ने जो है वो नूर या मुनीर कहा है। तो इससे क्या बात पता चलती है कि सूरज मुख्तलिफ है और चांद जो है वो मुख्तलिफ है। वसख्खरा शम्सा वल कमर, शम्स खूबसूरत रोशन, तो सूरज को अल्लाह ताला ने मुसख्खर किया और चांद को भी जो है वो मुसख्खर किया। तो इसके मानी क्या है कि ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत की निशानी है कि ये सूरज ये चांद जो है ये भी अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से हैं। और क्यों सूरज और चांद का खास तौर पर जिक्र किया और सितारे और उन चीजों का जिक्र नहीं किया? इसलिए कि बहुत जमाने ऐसे गुजरे, हर दौर में कुछ ना कुछ लोग कभी सूरज की पूजा करते रहे, कभी चांद की पूजा करते रहे। जो चीजें उनको रोशन नजर आती, नुमाया नजर आती, उभरती हुई नजर आती, जाहिरी मादी, लोग उसको उसके आगे झुकते रहे। तो कहा कि नहीं, ये सूरज और चांद दोनों को जो है वो अल्लाह ने मुसख्खर किया है। और इसको मुसख्खर करने का मतलब क्या है? सूरज को जो मुसख्खर किया, चांद को जो मुसख्खर किया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह ताला के निजाम के पाबंद हैं। इनकी जो गर्दिश है, इनका अल्लाह ताला ने दोनों की गर्दिश का एक तरीका, एक मंजिल, एक दायरा जो है मुतय्यन कर दिया है। इन दोनों को पता होता है कि कहाँ सफर खत्म हो रहा है और दूसरे रोज कहां से शुरू करना है और कहां जाकर फिर ठहर जाना है। जैसे कि आगे क्या फरमाया, कुल्लू यजरी, ये सब चलते हैं, इला अजल मुसम्मन, एक वक्त मुकर्रर तक। तो हर चीज की अल्लाह ने एक मुद्दत मुकर्रर की है, उस वक्त तक वो चल रही है। सूरज है, चांद है, कायनात का कोई भी सैयारा है, हर एक का एक वक्त आगाज है और एक वक्त इख्तिताम है। ऐसे नहीं हादसे के तौर पर ये चीजें मौजूद में आ गईं। रात है, दिन है, सूरज है, चांद है, कुल्लुई अजरी, सब एक वक्त मुकर्रर तक जो है वो चल रही हैं। इसके मानी क्या है? इन सब का शुरू होने का, रुकने का जो है एक वक्त मुकर्रर है। और बड़ी खूबसूरत हदीस है, हजरत अबू जर रजी अल्लाह अन्हो ने जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जर रजी अल्लाह अन्हो से फरमाया, जानते हो ये सूरज कहाँ जाता है? जब गुरूब होता है तो कहाँ जाता है? अबू जर रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं, मैंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जानते हैं। फरमाया, इसकी आखिरी मंजिल अर्श इलाही है, ये वहां जाता है और अर्श के नीचे सजदा रेज होता है, फिर वहां से निकलने की अपने रब से इजाजत मांगता है, पूछता है अल्लाह से कि मैं फिर तुलू हूं, अल्लाह इजाजत देता है तो तुलू होता है। एक वक्त आएगा कि इसको कहा जाएगा, इर्जई मिन हैसु जेती, तू जहां से आया है वहीं लौटा, तू जहां से आया है वहीं लौट जा। तो मशरिक से तुलू होने की बजाय मगरिब से तुलू होगा, जैसा कि कुर्ब कयामत की अलामात में आता है। ये सही बुखारी की रवायत है। उस दिन उसको ना दोबारा तुलू होने की इजाजत नहीं मिलेगी और वो दिन होगा कयामत का। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, मैंने अन्हुमा क्यों कहा? अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा क्यों कहा मैंने? दोनों कौन? एक हजरत अब्दुल्ला और दूसरे उनके वालिद अब्बास, अब्दुल्ला बिन, हाँ समझ आ गई, दो सहाबियों का नाम हुआ ना, इसलिए। तो वो फरमाते हैं, सूरज राहट की तरह है, दिन को आसमान पर अपने मेदार पर चलता रहता है। मेदार क्या? ऑर्बिट, वो जो उसका दायरा है जिस पर उसको चलना है, चलता रहता है। जब गुरूब हो जाता है तो रात को जमीन के नीचे अपने मेदार पर चलता रहता है, यहां तक कि मशरिक से तुलू हो जाता है। इसी तरह चांद का मामला है। तो ये है कि कुल्लु यजरी इला अजल मुसम्मा व अन्नल्लाह बिमा तअमलून खबीर, कि जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। अब आप देखें, सूरत लुकमान आपको आप पढ़ रही हैं, और कितनी दफा जो है अल्लाह ताला का जिक्र आया है। अल्लाह की सिफात बड़ी खूबसूरत है, और ज्यादातर अल्लाह ताला ने अपनी ऐसी सिफात का जिक्र किया है जिसमें अल्लाह के अलीम, खबीर, लतीफ है ना, बसीर, ऐसी सिफात का जिक्र है। इन्नल्लाह अलीमुम बिजाति सुदूर, आयत 23 में आप ये पढ़ चुकी हैं, पढ़ा ना आपने ये बात। फिर इसी तरह आप पिछली आयत को आप देखें, आयत 16 में आपने पढ़ा इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, आयत 15 में पढ़ा फाउनबियुकुम बिमा कुंतुम तामलून। तो एक दफा नहीं, कई दफा अल्लाह ताला जो है वो अपना तारुफ करवाते हैं, और जिसमें खास तौर पर अल्लाह ताला अपनी ऐसी सिफात का तारुफ करवाते हैं कि मैं जानता हूं, मुझे इल्म है, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मेरे फैसले हिकमत और कुदरत पर मबनी हैं। और यहां पे भी यही बात कही कि जो कुछ भी तुम करते हो वह अन्नल्लाह बिमा तअमलून खबीर, अल्लाह ताला जो है वो उसको जानता है। तो सूरज और चांद, रात और दिन तो अल्लाह की करे बंदगी, और ए इंसान तुम शिर्क करो और तुम अपने आप को मेरे आगे ना झुकाओ, ये निशानियां तो देखो और फिर तुम सोचो कि अल्लाह इनको दोबारा पैदा नहीं कर सकता? क्या ये अल्लाह की रबूबियत की शान नहीं है? फिर अल्लाह के साथ तुम किसी दूसरे को शरीक क्यों करते हो? क्या जो रब ऐसी निशानियां और ऐसी ऐसी जो है वो बेहतरीन चीजों को पैदा कर सकता है, तो वो फिर जो है वो रोजे जजा का मालिक क्यों नहीं हो सकता? ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ। ये सब कुछ क्यों होता है, ये रात दिन, ये सूरज और चांद, ये निजामे कायनात जो बाकायदगी से चल रहा है। हमारे लिए तो रोज गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता है, स्नो सीजन में स्नो साफ करना मुश्किल हो जाता है, रोज खाना पकाना मुश्किल हो जाता है। कभी पकाते हैं, कभी कहते हैं कल का ही जो है हम इस्तेमाल कर लेंगे। जो काम रोजाना करते हैं वो भी बाकायदगी के साथ सही तरीके से एक डिसिप्लिन से करना मुश्किल हो जाता है। क्लास पता है कि 9:30 शुरू होनी है, लेकिन बाकायदगी, वक्त की पाबंदी, डिसिप्लिन, इम्तहान आना ही है, इम्तहान होना ही है, लेकिन मुश्किल लगता है कि क्यों कैसे। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम देखते नहीं हो कि कायनात के अंदर ये बाकायदगी, ये पाबंदी, ये जो भी कायनात के निजाम से इंसानों तुम्हें फायदा हो रहा है, ये रबूबियत की वजह से है। ज़ालिका भी अल्लाह कि अल्लाह ही हक है, वो माबूद हकीकी है, सिर्फ अल्लाह ताला। तमाम कायनात की जो बाग दौड़ है, जो निजाम है, वो तन्हा उसी के हाथ में है। वअन्नल्लाह मा यदउना मिन दूनिहिल बातिल, और उसे छोड़कर, वअन्नल्लाह मा यदउना, और जिसे तुम पुकारते हो, तुम शरीक करते हो, मिन दूने उसके सिवा, वो क्या है, अल बातिल, बातिल है। दून का लफ्ज कभी सिवा के मानी देता है, कभी मुकाबिल पे आ जाता है, मुकाबिल के मानी देता है कि तुम अल्लाह के सिवा जो है वो दूसरों को अल्लाह का मुकाबिल ठहराते हो, या फिर अल्लाह के सिवा शरीक करते हो, तो वो है बातिल। तो बातिल का ऑपोजिट क्या है, हक, और हक का ऑपोजिट क्या है, बातिल। तो क्या बताया यहां पे कि तुमने जो खुद से फर्जी खुदा बना रखे हैं माबूद, किसी को मुश्किल कुशा कहते हो, किसी को जो है वो बेटा देने वाला कहते हो, किसी को कहते हो कि उससे ये मसला हल हो जाता है, दाता गंज बख्श मुश्किल कुशा, और अल्लाह दिता की बजाय तुम कहते हो पीर दिता, ये सब बातें क्या हैं, ये सब चीजें बातिल हैं। वअन्नल्लाह हुवल अलीयुल कबीर, और असल वजह क्या है कि अल्लाह ही बुजुर्ग और बरतर है। तो अलीयू, इसके माने क्या है कि अल्लाह ताला की जात जो है वो बहुत बुलंदियों वाला है, बाला और बरतर है। जितने भी तुम्हारे माबूद है ना, वो सब पस्त हैं। ये पूरी कायनात का निजाम अल्लाह की बरतरी पर, अल्लाह के आला होने पर जो है वो दलालत करता है, शाहिद है। अल कबीर, अब आप देख लें कि कबीर भी बड़े को कहते हैं, लेकिन अल्लाह आ गया साथ, है ना। इसके माने क्या है कि अल्लाह ताला की जात बड़ी ही अजीम है, ये इसकी कुदरत के, इसकी हिकमत के क्रश में है। रात दिन, सूरज चांद, ये पूरी कायनात का निजाम, और अल्लाह बड़ी शान वाला है, उसकी अजमत शान, उसका आला मर्तबा, उसकी बड़ाई के सामने हर चीज जो है वो हकीर है, हर चीज पस्त है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला मुशरकीन की जो उनका शिर्क था, उनका सूरज और चांद का जो था उनका पुजारी बनना, उसके उसकी उसको अल्लाह ताला रद्द करते हैं और तौहीद के दलाइल देते हैं। फिर आप देखिए आगे चलते हैं, और यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों को जो अल्लाह की बंदगी नहीं करते और शिर्क करते हैं और किब्र करते हैं, उस पर तंबीह करते हैं। अलम तरा अन्नल फुल्का तजरी फिल बहरी, क्या तुम नहीं देखते, फिर अलम तरा, एक एक को पकड़ कर सोचने समझने की दावत दी जा रही है, मगरूरों को तंबीह की जा रही है। अब कश्ती की मिसाल देकर जो मुखातिब है उन्हें इस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि जरा गौर तो करो, अन्नल फुल्का के कश्ती जो है, और फुल किसे कहते हैं, ये इसम जिन्स है, वाहे जमा मुजक्कर मोनस सब के लिए आती है, एक कश्ती है, ज्यादा कश्तियां हैं, और बहुत बड़ी हो तो जहाज के मानी भी देती है। तो ये जो कश्ती है, तजरी फिल बहरी, चलती है समंदर में, बाहर में, तो समंदर के अंदर कश्ती क्या करती है, कश्ती चलने लगती है, बिनेमतिल्लाही, अल्लाह की नेमत से, अल्लाह के फजल से। और आपको पता ही है कि नेमत जो है इसके मानी क्या होते हैं? नेमत का लफ्ज भी क्या है? ये भी इस्म जिन्स है। समंदर के अंदर कश्ती का चलना लोगों कोई मामूली बात थोड़ी है, ये अल्लाह का बड़ा फजल है, ये अल्लाह का बड़ा करम है। अब आप देखें कि पानी जो है इसकी खासियत क्या है। पानी में अगर आप कोई वजनी चीज डालती हैं, पत्थर डालती हैं तो अंदर डूब जाता है, आप कोई चीज फेंकती हैं तो वो उसके अंदर चली जाती है। अगर वो चीज आप डालें जो कि जिसका वजन जरा कम है या हल्की है तो पानी के ऊपर जो है वो तैरती है ना। लेकिन अब यहां पे देखें कि कश्तियां और जहाज जो हैं वो पानी की सतह पर चलते हैं। पानी है लिक्विड माया, और कश्तियां और जहाज कितने भारी होते हैं, कितने बड़े बड़े होते हैं, कितने वजनी होते हैं। तो अल्लाह ताला यहां पे ये बात बताना चाहते हैं कि जहाज और जो कश्तियां हैं इतने भारी होने के बावजूद समंदर के सीने को चीरते हुए समंदर पर चलते हैं। तो लोगों, क्या ये अल्लाह की कुदरत की निशानी नहीं है? बिनेमतिल्लाह, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की नेमत से ये जो बहरी सफर हैं, ये जो जहाज हैं और समंदर की तुगियानियों में और समंदर जो हौलनाक है उसके अंदर इंसान जो सफर करता है, अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे ज़राए वसाइल दिए, ऐसे उसको अकल और फन दिया कि उसने जो है वो पानी को मुसख़र किया और फिर उसमें जो है वो अपने जहाजों को चलाना शुरू किया। तो ये जो कश्तियां चलती हैं ये तुम्हारे फन की वजह, स्किल की वजह से नहीं, बल्कि ये बिनेमतिल्लाह, अल्लाह के फजल से। ले यूरियाकुम, ताकि वो तुमको दिखा दे, यूरियाकुम ताकि वो तुम्हें दिखाए, मिन आयाते ही अपनी कुछ निशानियां। तो यहां पर जो है जो बात बताना अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते हैं, जिस बात को समझाना चाहते हैं वो क्या है कि ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। अल्लाह ताला अगर चाहें तो जो कश्तियां और जहाज हैं वो डूब भी सकते हैं, डूब भी सकते हैं समंदर के अंदर, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, मौजें तलातुम खेज हो जाएं, तो फौरन जो भी समंदर के अंदर जहाज हैं, कश्तियां हैं, जो इंसान हैं, वो एक ही टक्कर से, एक ही चोट से, एक ही तुगयानी से जो है वो डूब कर रह जाए। तो इंसान जो खैरियत के साथ अपने सफर को पूरा कर लेता है तो ये क्या है? ये अल्लाह ताला की तौफीक है, ये अल्लाह का फजल है। तो अल्लाह का फजल, अल्लाह की नेमत जब मिले तो फिर करना क्या चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, बेशक इसमें निशानियां हैं। लआयात, एक निशानी नहीं कही, कहा कि इसमें बहुत सी निशानियां हैं। और ये निशानियां, जो बहुत सी निशानियां हैं, ये किन लोगों को मिलती हैं ये निशानियां? जिनके अंदर दो सिफात होती हैं, हर सब्बारिन और हर शकूर के लिए। और आप देख लें कि ये जो निशानियां हैं, इन निशानियों से मुराद क्या है कि इंसान जो है वो समंदर की तुगयानी से जब बाहर आए तो फिर वो फलाह के रास्ते को पा ले। जब कश्ती डोलने लगे, जब जहाज डूबने लगे, जब समंदर की लहरों में की गर्दाब में वो फंस जाए, भंवर में फंस जाए, और उस वक्त जो है हालात इतने नासाजगार होते हैं कि इंसान जो है वो सारे खुदाओं को छोड़कर, सारे माबूदों को छोड़कर तौबा तौबा करता है, एक अल्लाह को पुकारता है। और जो ही इंसान खुश्की पर वापस आ जाता है तो फिर इंसान जो है दोबारा शिर्क करने लगता है। ये कैसी अजीब बात है! कौन से सहाबी थे जिन्होंने कहा कि वो बात जो समंदर की तुगयानियों में समझ में आई वो खुश्की में समझ में ना आई? वो कौन थे? हजरत इकरमा रजी अल्लाह अन्हो, ये अबू जहल के बेटे थे। और आप देख लीजिए कि यहां पे भी जो बात बताई जा रही है वो क्या है कि कश्ती के अंदर मुसाफिरों को बहुत से मुख्तलिफ हालात पेश आते हैं, तो इनसे क्या करना चाहिए? सबक लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए। तो दुनिया की कश्ती, दुनिया की कश्ती में जिसके हम सब मुसाफिर हैं, खुश्की के भी हम मुसाफिर हैं ना, और समंदर के भी मुसाफिर हैं, तो यहां पे भी हमें बहुत से हालात पेश आते हैं। तो सफर खुश्की का हो या समंदर का हो, तो ये सफर के अंदर जो आजमाइशें पेश आएंगी, क्योंकि मुसाफिर को हर तरह के हालात पेश आते हैं। आप में से कभी किसी को समंदर के सफर का इत्तफाक हुआ? हाथ खड़ा करें, कितने लोगों को हुआ? अच्छा, 3, 4, 5 लोगों को हुआ। चलो फेरी ही सही, आपने फेरी का सफर किया। तो आप देखें कि उसके अंदर होता क्या है। मुझे समंदर के सफर का इत्तफाक हुआ, अमेरिका के अंदर भी जो है वो काफी दूर तक हम, कुछ घंटों का सफर था जो हमने किया, और जो थे वो केप कॉड का इलाका था, और उसमें हम गए थे। किस लिए गए थे कि ये भी अल्लाह की कुदरत की निशानी है कि इसको भी जो है वो देखा जाए। तो व्हील जो फिश है उसका वो दिखाना चाहते थे कि वो बाहर निकलती है और वो नाचती है, नाचना वगैरह तो कोई नहीं था, लेकिन बहरहाल बहुत बड़ी बड़ी जो थी वो व्हील निकली, और फिर वो कुछ देर रही और फिर वो अंदर चली गई। बहरहाल लोग खुराक वगैरह भी डालते हैं, और जो उसके पायलट था जहाज का, उसको पता था कि कब आती है और कब कब कौन कौन सी जगहों पे ये पाई जाती है। तो बहरहाल असल बात क्या है कि जब समंदर के अंदर हैं आप, खुशकी में नहीं है, हालांकि मौत खुशकी में भी आ सकती है, लेकिन उस वक्त दिल की हालत क्या होती है, दिल का जेरो बम कैसा होता है, कैसा दिल धक धक करता है कि खैरियत से पहुंच जाए ना एक दफा समंदर पे। आम सफर है, अभी कोई तुगयानी नहीं है, और जब तुगयानी हो, तूफान हो, तो उस वक्त क्या है कि मौजों के थपेड़े जो है वो जहाज और कश्ती को बिल्कुल उल्टा करने लगते हैं, जैसे लगता है कि बस अब ये उलट जाएगी, ओंधी हो जाएगी। उस वक्त इंसान क्या करता है, जब एक्सीडेंट होने लगे, खुशी के सफर में एक्सीडेंट होने लगे, लगे कि बस अब एक्सीडेंट हो गया और हो गया, या कोई सख्त किस्म की बीमारी का पता चले। अभी कल ही जो एक औरत कैंसर की मरीज फौत हुई, और पेट का कैंसर था, और कहते हैं कि बहुत बुरी हालत थी, 3 माह तकरीबन वो औरत जिंदा रही, और फिर अल्लाह की कुदरत के नाफ के पास खुद ही सुराख हो गया, जिससे उसके अंदर से गंदगी पानी वगैरह निकलता था, तफुन शोहर उसका वहां पे ड्रेसिंग करता था, बेटी को नहीं, खुद ही करता था। तो आप सोचें कि शोहर भी अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है ना, कैसे बीवी का साथ दिया। और कैंसर का मर्ज और इसकी बीमारी आप कितनी कसरत से अब सुन रहे हैं ना, और बस ऐसे ही है, 2 महीने 4 महीने 1 साल। और पेट का जो कैंसर है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत जल्द तेजी से फैल जाता है, और अल्लाह चाहे तो शिफा भी दे देता है। तो ऐसे में इंसान को किसी ऐसी मूजी बीमारी का पता चले, आंख का कैंसर है या पेट का कैंसर है, किसी का जुबान का कैंसर हुआ, जबान का आपने सुना, कुछ ही अरसे में फिर वो आदमी भी फौत हो गया, बड़ी इबरत की मौत थी, बड़ी मतलब बड़ी दर्दनाक अजियत की मौत थी उसकी भी, कुछ खा नहीं सकता, कुछ चख नहीं सकता, जबान का कैंसर है। तो अजीब अजीब बीमारियां पता चलती हैं, और दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती, तो इंसान ऐसे में मायूस होकर फिर किसको पुकारता है, अल्लाह को पुकारता है ना। तो क्या कहा, इन्ना फिज़ालिका लआयातिन, के इसमें बेशक बहुत सी निशानियां हैं। बहुत सी निशानियों से क्या मुराद है कि जब इंसान मुसीबत में हो, जब इंसान तूफान में घिर जाए, तो फिर वो तौहीद को पाए कि उस मुसीबत तूफान से किसने बचाया, अल्लाह ने बचाया, बुतों ने तो नहीं बचाया, इंसान के नफ्स और खानदान की रस्म और रवाज ने तो नहीं बचाया, दोस्तों ने नहीं बचाया, औलाद ने और शोहर ने नहीं बचाया, असल में शिफा किसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है ना। तो ये है बात, लिकुल्लि सबारिन शुकूर, हर सबर करने वाले और शुक्र करने वाले। सबारिन भी मुबालगे का सीगा है, ये फालून का जो है वो वजन पर है, मुबालगे का सीगा, इसके मानी क्या है, बहुत ज्यादा सबर करने वाला। तो आम शख्स जो है वो इन आजमाइशों से निकल नहीं सकता, बल्कि कौन शख्स जो है वो निकलेगा, जो बहुत ज्यादा सबर करने वाला है, बहुत ज्यादा सबर करने वाला। और शुकूर जो है इसके मानी क्या है, बहुत ज्यादा शुक्र करने वाला। शकूरुन जो है फाउलुन सिफ्त का ये सीगा है, और ये मुबालगे के औजान में से है, मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए शकूरुन का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है, कि अल्लाह ताला की जात जो है वो बहुत ज्यादा जिन लोगों को नवाजती है, जो निशानियों से फायदा उठाते हैं, वो कौन से लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा सबर करने वाले होते हैं और बहुत ज्यादा शुक्र करने वाले होते हैं। तो ये निशानियां देख कर तौहीद को पा लेना, तौहीद पर मजबूती से जम जाना, ये है असल चीज। तो सबार होते कौन है, जम जाने वाले, रुक जाने वाले, साबित कदमी दिखाने वाले। हालात नागवार हैं या खुशगवार हैं, सख्त हैं या नरम हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, तमाम हालात में एक जो सही अकीदा है उस पर कायम रहने वाले। तो अब ये नहीं होता कि बुरा वक्त जब आता है तो वो फिर क्या करते हैं कि वो बुतों के आगे जाएं और नजरे नियाजे दें और फिर शिर्क करने लगे, नहीं, फिर वो क्या करते हैं, अच्छे हालात हों या बुरे हालात, वो अल्लाह के आगे झुके रहते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं होता कि जब बुरे दिन आए, जब मुसीबत की एक चोट पड़े, आजमाइश की एक चोट पड़े, तो अल्लाह को कोसने देने लगे या इस्लाम को बुरा भला कहने लगे। मौत की खबर सुनी, बहुत अजीज था, कोई करीबी था, और इंसान जो है वो अल्लाह को बुरा भला कहने लगे, इस्लाम को बुरा भला कहने लगे, या ये कि अपनी किस्मत को कोसने लगे। किस्मत क्या है, कौन बनाता है, अल्लाह ना। तो गोया के बाद लोग जमाने को बुरा कहते हैं, रसूल अल्लाह ने कहा जमाने को बुरा ना कहो, जमाना अल्लाह के हाथ में है। तो असल बात क्या है कि वो सब्बार हैं, बगैर सब्र के मुसलमान नहीं बना जा सकता, मैं हूं या आप हैं। और ये सब्र एक दिन और दो दिन की बात नहीं है, एक घड़ी और दो घड़ी की बात नहीं है, सारी जिंदगी सब्र करना है, जवानी में भी, बुढ़ापे में भी, इखलाक में भी, किरदार में भी। मसलन आपकी दो बहनों ने, दो साथियों ने जो है वो चेहरे का पर्दा करना भी शुरू किया, यानी चेहरे के पर्दे से जो है वो अपनी जिंदगी का आगाज किया है सूरत नूर पढ़ने के बाद। बाज लोग जो है वो जिलबाब तो पहनते हैं लेकिन चेहरे को ढांपते नहीं हैं, लेकिन जब उनके सामने अल्लाह ताला के अहकाम आए और उनको ये पता चला कि ये भी इससे दीन का जो है वो मंशा पूरा होता है, और पर्दे के, पर्दा का जो मकसद है पूरा नहीं होता जब तक कि चेहरे को ढांपा ना जाए, तो माशाल्लाह वो जो है वो अमल की जो है वो नंगी तलवार बन गई, और उन्होंने माशाल्लाह पर्दा करना शुरू किया। और मैं मुस्तकिल इस बातें सोच रही थी कि आगाज बड़ा आसान है, पहला कदम उठाना बड़ा आसान है, सारी जिंदगी कदम उठाते चले जाना, कर लिया है सारी जिंदगी अब करते रहे, ये है असल बात। क्योंकि बहुत से लोग हैं चेहरे का पर्दा करना शुरू करते हैं पहली चोट पर, पहली चोट पड़ती है फिर उसको उतार देते हैं, और ये चीज इस्लाम के लिए बड़ी नुकसानदेह है। लोग कहते हैं अच्छा थोड़े दिनों का जोश है उतर जाएगा, थोड़े दिनों में देखेंगे ना फिर, और फिर बहुत से लोग जो पहनते हैं और जब उतारते हैं, मेरी बहनों इससे दीन इस्लाम को बड़ा नुकसान होता है, ये बड़ा जो है वो हल्का किरदार है। अब अल्लाह ताला को तो पता था ना दीन इस्लाम पर अमल करने वाले कनाडा अमेरिका में भी रहेंगे, बाद लोग कहते हैं अमेरिका और कनाडा में इस पे अमल नहीं हो सकता, है ना, कि दीन पे अमल करना था पाकिस्तान से क्यों आए थे। तो सारी दुनिया अल्लाह की है, सारी दुनिया अल्लाह की है। और आप देखें कि फिर बाद लोग कहते हैं हम पहनने वाले तो हैं, हमने शुरू तो कर दिया, लेकिन जब हमने देखा कि मुखालफत बड़ी और बाकी लोग नहीं कर रहे तो फिर हमने भी उतार दिया। मुझे आप एक बात का जवाब दें कि आप जब पहनती हैं, आप में से कितने लोग हैं जो पहले पहनते थे, हाथ खड़ा करें जरा, पर्दा या बुरका आपने कुछ अरसा पहना, कितने लोग थे जो पहनते थे, हाथ खड़ा करें। आप देखें आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले पहनते थे और अब नहीं पहनते, तो आपने ये देखा कि लोग नहीं पहन रहे, माहौल उसे हटकर है, आपने जब उतार दिया, तो क्या लोगों ने जो पहनने वाले हैं क्या लोग उनको देखकर पहनना शुरू कर देते हैं जो नंगे होते हैं जो नहीं पहनते। जब लोग जो हैं जो नंगे हैं जो लिबास भी नहीं ढांपते, जिलबाब पर्दा तो दूर की बात है, वो पहनने वाले को देखकर पहनना शुरू नहीं करते, तो आप उतारने वालों को देखकर उतार क्यों देते हैं, ठीक है ना। तो रीस तो नेकी में करनी चाहिए, बुराई में क्या रीस करनी, और दौर भी कौन सा है कि नेकी सर छुपा के चल रही है और बदी दनदनाती फिरती है, और ऐसे में कोई एक इस्लाम के हुक्म को लेके उठेगा और चलेगा तो क्या है कि उसने जो है वो इस्लाम को मजबूत किया। और ये वो दिन है, आप समझ लीजिए कि इस्लाम की एक सुन्नत को जिंदा करना जो है वो गड़ी हुई, जैसे किसी मुर्दा लड़की है उसको जमीन में गाड़ दिया जाए उसको जिंदा करना है, या फिर ये कि 100 सुर्ख ऊंटों को भी अल्लाह के रास्ते में दे दे तो उसका सवाब मिलेगा। कि अल्लाह की सुन्नतें, इस्लाम की वैल्यूज कम होती जा रही हैं, गिर रही हैं, इस्लाम तजलील हो रहा है, और ऐसे में आप में से कोई उठता है और इस्लाम के झंडे को पकड़ता है, कोई भी हो सकता है, बहुत सी बातें हैं, बस यही हलाल पर कनात कर लेनी है, इस पर सबर करें, फिर जम जाएं, फिर बर्दाश्त करें, कुछ भी है फिर सारी जिंदगी बर्दाश्त करना है। आपने जिलबाब पर्दा करना शुरू किया, फिर जम जाएं, फिर डट जाएं, कोई ये भी आपको ताना देगा, अच्छा ये तो करना शुरू कर दिया, फला फला काम तो करती ही नहीं, आपने गुस्से में आके वो भी उतार दिया, कि चलो मैं तो इतनी कमजोर हूं, फलां फलां काम तो करती नहीं, इसने ये ताना दे दिया है, और आपने शैतान की जो वसवसा था और उसकी जो ये चाल थी उसको आपने जिंदा कर दिया। नहीं, इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन, इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन। सिर्फ ये नहीं कहा कि शायद अगर ना होती और खाली ये होता कि उनके अंदर सब्र होता है, ये वाली बात नहीं है। सब्बारिन, बहुत ज्यादा सब्र करने वाले, और दूसरी बात कही शुकूर, बहुत ज्यादा शुक्र करने वाले। और शुक्र करने के क्या मानी होते हैं? बड़ा शुक्र करने वाले। और शुक्र आप पहले ही पढ़ चुकी हैं कि शुक्र के अंदर एतराफ नेमत होता है। आपने पीछे सबक में पढ़ा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम को कि हमने लुकमान को जो है हिकमत अता की थी। क्यों हिकमत अता की थी? अनिश्कुर लिल्लाह, कि वो अल्लाह का शुक्र गुजार हो। और जो कोई शुक्र करेगा, वमन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही वमन कफरा फइन्नल्लाह गनीयुन हमीद। और जो कोई शुक्र करेगा तो उसका शुक्र अपने ही लिए है। तो शुक्र किसे कहते हैं? एतराफ नेमत को। और ये पहला सबक है शुक्र का, ये पहली सीढ़ी है शुक्र की। और जो कोई नेमतों का एतराफ नहीं करता, वो कभी भी जो है वो नेमतों का इजहार नहीं कर सकता। तो सबसे पहले क्या है कि नेमतों का एतराफ करना शुरू करें। और शुक्र करने वाले कौन होते हैं? जो नेमतों को पहचानते हैं, जो नेमतों को महसूस करते हैं, जो नेमतों की का एतराफ करते हैं, उनकी कदर करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो नेमतों के आगे जो है वो अल्लाह के आगे अपने आप को जो है वो झुका देते हैं। ये है शुक्र, शुक्र करने वाले होते हैं। तो शुक्र पूरा नहीं होता जब तक एतराफ़े नेमत ना हो। इसके साथ आप प्लस का निशान ले लगाकर लिखें इजहारे नेमत। तो एतराफ़े नेमत में दिल और दिमाग शामिल होता है कि दिल जो है एक बात को जब मानता है, दिमाग उसका जो है वो उसके बारे में सोचता है ना, तो फिर क्या होता है कि फिर उसका इजहार होता है। इजहार कैसे करते हैं? जबान से करते हैं और फिर अपने जवारे से करते हैं, लिसान से करते हैं और जिस्म के बाकी अज़ा से। सही बात है ना? तो पहले शुक्र होता है कल्बी, फिर उसके बाद होता है लिसानी, और फिर उसके बाद होता है अमली, और अमली में पूरा जिस्म शामिल हो जाता है। तो शुक्र फिर किस किस का करना है? अल्लाह का भी और अल्लाह के बंदों का भी, और हमें भी शुक्र जो है वो करना चाहिए। और सबसे ज्यादा हम पर किसके एहसानात हैं? अल्लाह के बाद। सबसे पहले अल्लाह ताला, फिर कौन है? वालदैन। फिर कौन है? शौहर। शौहर उस्ताद भी है, सही है ये बात। तो फिर कौन है? शौहर है। तो होमवर्क क्या है? अल्लाह के एहसानात जो है सबसे पहले उनको महसूस करें, उनका एतराफ करें। फिर इसी तरह वालदैन के जो हम पे एहसानात हैं उनका, उनको महसूस करें, उनका एतराफ करते करें। वालदैन ना होते तो मेरा और आपका वजूद ही ना होता। वालदैन ने, पीछे आपने पढ़ा ना, वहन पे वहन करके माँ ने जो है वो दुनिया में मुझे और आपको जन्म दिया। फिर आप देख लीजिए कि इसके अलावा और क्या है कि शौहर के कितने एहसानात हैं। कितना भी बुरा सही, लेकिन शौहर के मुझ पर और आप पर बहुत से एहसानात हैं। वैसे तो शौहर बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, और बहुत से लोगों के बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम में से बहुत सी औरतें निशुक्री करते हैं। मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल उसमें हो सकती हैं। तो आप ये बात देखें कि अगर शौहर ना होता तो मैं अपने घर के अंदर ही होती। फिर अगर शौहर ना होता मेरे पास औलाद कहाँ से आती? अगर शौहर ना होता तो मेरा घर कहाँ से होता? और बहुत सी बातें। तो अल्लाह के एहसानात, वालदैन के, शौहर के, और बहुत से लोगों के एहसानात। तो हम पे लोगों के एहसानात बहुत हैं, लेकिन हम उनका एतराफ नहीं करते। तो एतराफ न करना ये नमक हरामी है। एतराफ न करना नेमत को ना पहचानना है। तो क्या करना है? शुकूर बन जाना है, शुक्र करने वाला। और शुक्र करने के लिए क्या है कि दिल के अंदर उसके लिए मोहब्बत के जज्बात हों। नेमत को जब पहचाने के तो दिल के अंदर मोहब्बत के जज्बात होंगे ना। तो ये है असल बात कि मैं और आप तकलीफों में सब्र करने वाले, राहत और खुशी में अल्लाह का शुक्र करने वाले। तो ए अच्छा बताइए कि दोनों में से मुश्किल कौन सी सिफत है, सबारिन या शुकूर? कितने लोग कहते हैं सबारिन मुश्किल है, वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सब्र मुश्किल है। अच्छा, कितने लोग कहते हैं शुकूरिन मुश्किल है? अच्छा, ज्यादा लोग कह रहे हैं कि शुकूरिन मुश्किल है। उल्मा की ज्यादातर राय यह है कि शुकूरिन की सिफ्त ज्यादा मुश्किल है। हाँ, सबारिन से शुकूरिन की सिफ्त मुश्किल है, ये सलफ सालहीन की और उल्मा की राय। क्यों? इसकी असल में ये रीजन है कि जब सर में दर्द होता है तो हमें पता होता है कि सर में दर्द हो रहा है, अब सबर मुझे करना है ना। लेकिन यानी एक मुसीबत जब आती है, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, तो वो मुसीबत, तकलीफ, परेशानी जो है वो हमें एहसास दिलाती है कि मैं और आप बड़े दुख में हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, वावेला है, आहें भर रहे हैं, दामन फैला रहे हैं, झोली उठा रहे हैं। पता है कि एक आजमाइश में से है, सबर करना है, और सबर नहीं हो रहा इसलिए कि सबर बड़ा मुश्किल है। दूसरी है नेमत, शुक्र की नेमत। नेमत जब शुक्र की होती है तो होता क्या है, नेमतों की कसरत होती है, नेमतों की फरावानी होती है, नेमतों की बारिश होती है। और अक्सर औकात जब नेमतों की फरावानी और बारिश होती है तो इंसान फरेहा बन जाता है, फिर इंसान मरेहा की रविश पर आने लगता है, अतराता है मराहा, फिर मुख्तालिन बन जाता है, फिर फखूर बन के बजने लगता है, फखर करना। आपने कल फखार पढ़ा था ना, बजने वाली ठीकरी जैसी मिट्टी से इंसान को पैदा किया गया। तो इंसान क्या करता है, थोड़ी सी नेमतों से के मिलने पर फखर और गुरूर करके किबर का शिकार होके अल्लाह की बंदगी की हदों से निकलने लगता है। वो समझता है ये सारा कुछ मेरा अपना किया धरा है, ये मेरा कमाल है, ये मेरी काबिलियत है, ये मेरी वजह से ऐसा हो गया। तो ये बच्चों की तरबियत पर सीना उसका उसका दिल दिमाग फूला नहीं समाता, अपने जामे में फूला नहीं समाता। कभी जो है वो दौलत के मिलने पर, कभी अच्छी जॉब के मिलने पर, कभी अच्छा घर मिलने पर वो कहता है कि ये सब मैं उसकी मैं जो है उसके पांव जमीन पर टिकने नहीं देती। उसको एहसास ही नहीं होता कि ये भी एक आजमाइश है, एक दुख की आजमाइश है, एक सुख की आजमाइश है। सुख की आजमाइश ज्यादा सख्त है कि एहसास नहीं होता कि ये भी आजमाइश है। तो बहरहाल तो फिर क्या है कि करना क्या चाहिए, शुक्र करेंगे तो सब्र पैदा होगा ना, एहसास होगा कि अल्लाह ने नेमतें दी हैं तो फिर हम सब्र करेंगे। तो दोनों नेमतें अहम भी हैं, जरूरी भी हैं, और दोनों का आपस में चोली दामन का साथ है। फिर अगली आयत में फरमाया वाइजा गशिया हूं मौजून, और जब इन पर जो है छा जाती है मौज। गशिया के मानी क्या होते हैं, छा जाना, ढांप लेना। तो जब उन पर जो है मौजें या मौज छा जाती है, कस दुलाली, कैसे, साइबान की तरह, बादल की तरह। जोए लाम लाम के मानी क्या होते हैं, जैसे साया है, तो उस पर मौत जो है साइबानों की तरह छा जाती है। दाउल्लाह, तो वो पुकारता है अल्लाह को। अब मुसीबत आई, कश्ती आराम से चल रही थी, वो भी मस्त था, मुसीबत आई, तूफान में कश्ती घिर गई, अब वो पुकारने लगा अल्लाह को, अब बुतों को नहीं पुकार रहा, अब अल्लाह को याद करने लगा। मुखलिसीन, मुखलिस होकर, अब क्या है इखलास, सारे जो घरोंदे थे ना शिर्क के वो सब ढह गए हैं, अब मुखलिसीन लहुद्दीन, तो अपने दीन को उसके लिए खालिस करके निहायत खुलूस के साथ अब उसका यकीन ये है कि वो अल्लाह ही को पुकारने लगता है। मानी क्या है कि अब जो है सारे जो जमीनी बुत थे वो जहनों से निकल गए हैं, आसमानी इलाह को पुकारने लगा, एक अल्लाह, एक अल्लाह को जो है पुकार रहा है। बड़ी अजीब बात है कि साहिबानों की मानिद उठने वाली मौजे जो है उन्होंने उसको ढांक लिया, अब अल्लाह याद आया है, अब उसको सिर्फ एक अल्लाह से वो फरियाद कर रहा है। और लहुद्दीन, दीन के मानी क्या है, जिंदगी गुजारने का तरीका है ना। और फिर ये कि वाकई तो रोज़े जज़ा का मालिक है, फिर ये कि वाकई दुनिया में जो कानून है, जैसे किसी बादशाह का कानून जो है उसके लिए भी आता है, तो सब कुछ उसके लिए खालिस कर देता है इंसान, दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके। फलम्मा नज्जाहुम, फिर जब अल्लाह ताला उसको निजात दे देता है, बचाता है, इलल बर्री, खुशकी की तरफ, फमिनहुम मुक्तसिद, तो फिर इनमें से कोई इक्तसाद बरतता है। मुक्तसिद जो है इसके क्या मानी है, मुक्तसिद जैसे मैंने आपको बताया ही था, काफ स्वाद दाल जो है इसके मानी म्याना रवि के भी होते हैं, औस्त जैसे दरमियानी रविश पर चलना। तो इक्तसाद के मुफस्सरीन क्या कहते हैं कि या तो इसको तवस्सुत और एतदाल के मानी में लिया जाए, तो अगर तवस्सुत और एतदाल के मानी में लिया जाए तो इसके मानी ये हैं कि वो लोग जो समंदर के अंदर शिर्क कर रहे होते हैं, पहले वो मुशरिक होते हैं ना, जब वो तूफान आता है तो फिर वो शिर की उस शिद्दत पर कायम नहीं रहते, बल्कि क्या करते हैं कि अब जो है वो शिर करना छोड़ देते हैं, दरमियाने रास्ते पर आ जाते हैं। और दरमियाना रास्ता कौन सा है? इस्लाम का रास्ता है ना। फिर इसी तरह इक्तसाद को बाज लोग रास्त रवि के मानी में भी लेते हैं, रास्त रवि। तो रास्त रवि जो है इसके मानी क्या होते हैं कि वो जो है वो सीधे रास्ते पर आ जाते हैं, वो शिर्क का रास्ता छोड़कर वो सिराते मुस्तकीम का रास्ता जो है वो इख्तियार कर लेते हैं, मुक्तसिद। पहले आप देखें कि कुफर कर रहे थे, शिर्क कर रहे थे ना, लेकिन जब समंदर की लहरों में घिर गए, फंस गए, तो अब कुफर की बजाय वो मुस्लिम हो गए। ये है रास्त रवि, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा नहीं, एक अल्लाह की बंदगी करनी है। जैसे हजरत इकरमा मुसलमान हो गए और मक्का के जो मुशरिक थे वो क्या करते थे, फिर एक अल्लाह को पुकारते थे, जब अल्लाह ताला उनको खुशकी में पहुंचा देता था फिर शिर्क करने लगते थे। तो यहाँ पे ये दोनों रवैये उनके जो हैं वो बताए गए हैं कि बाद लोगों ने मुक्तसिद के मानी जो हैं लिए हैं कि मुक्तसिद से मुराद है अहद को पूरा करने वाला। अच्छा, फिर क्या अहद उन्होंने किए? वो कहते थे कि अच्छा अब हम मुसलमान हो जाएंगे, फिर वो वादा करते थे कि नहीं बस एक अल्लाह की पूजा करेंगे, अब शिर्क नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब वहां से बाहर निकल आए तो फिर जो है वो शिर्क करने लगे, ठीक है। तो बहरहाल मुफस्सरीन ने इसको जो है वो नंबर एक जो है वो तवस्सुत और एतदाल के मानी में लिया है, नंबर दो रास्त रवि सीधे रास्ते पर चलने के मानी में लिया है, अहद को पूरा करने वाला उसके मानी में लिया है। तो बात एक ही है, इन सबका निचोड़ एक ही है कि वो क्या करते हैं, रास्त रवि पर सीधे रास्ते पर आ जाते हैं। मुक्तसिद यहाँ पे इस्म फाइल है, ये बाबे इस्तेयाल से है और इसके मानी होते हैं, ये इक्तिसाद मस्दर है। तो इसके मानी क्या है कि फिर जो है वो इक्तिसाद बरतते हैं, वमा यजहदु बि आयातिना, और नहीं इनकार करते हमारी आयात से। यजहदु भी इनकार है और कफारा भी इनकार है, तो कफारा की बजाय यजहदु क्यों आया? यजहदु होते हकीकत को मानने के बाद फिर इनकार करना, है ना, इल्म रखने के बाद फिर इनकार करना। तो अब मान गए थे समंदर की तुगयानियों में, फिर इनकार किया, तो नहीं इनकार करते हमारी निशानियों से, इल्ला कुल्लू मगर हर वो शख्स, खत्तारिन, खत्तारिन भी फालून के वजन पर मुबालगे का सीगा है, खातारा, इसके मानी क्या होते हैं, धोखा देना, बुरी तरह बेवफाई करना, मसलसल बेवफाई करते जाना। अब आप देखें कि खत्तारिन का ओपोजिट क्या है, सबारिन, है ना, वो सबर करते हैं लेकिन ये क्या करते हैं, गद्दारी करते हैं। और कफूरिन का ओपोजिट क्या है, शकूरिन। आप देखें कि अंदाज भी एक जैसा है, वजन जो है ना वो भी एक जैसा है। खत्तारिन जो है वो क्या है, फाल उनके वजन पर है, और कफूरिन जो है ये शकूर उनके वजन पर है, फाउल उनके वजन पर। मुबालगे का सीगा है दोनों के लिए, तो क्या है कि हर वो शख्स जो गद्दारी करने वाला है, हर वो शख्स जो कि नशुकरी करने वाला है। तो मुराद ये है कि ये वो लोग हैं जो कि अल्लाह ताला जो है उसकी नशुकरी करते हैं, बेवफाई करते हैं, अहदों को पूरा नहीं करते। अब उनको सबर करना चाहिए था, तौहीद पर जमना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गद्दारी कर दी। और उनको ईमान लाना चाहिए था, शुकूर उनकी जिंदगी में शुक्र आना चाहिए था, लेकिन वो कुफर करने वाले बन गए। तो ऐसे अजीब लोग हैं कि आजमाइशें उनकी जिंदगी में इनकलाब नहीं लाती, तब्दीली नहीं लाती।